Vamos juntos. मनुष्य जिसका निरंतर चिंतन करता है वही उसको दिखने लगता है। मनुष्य जो भी सोचते रहता है वैसा ही उसको बाहर अनुभव होने लगता है। जैसे कि अगर वो कोई चीज को सहज सोचता है तो उसे वो चीज सहज अनुभव होने लगती है। अगर कोई वो चीज कठिन सोचता है तो उसे कठिन होने लगता है। जो व्यक्ति वैराग्य के बारे में सोचते रहता है उसे चारों ओर वैराग्य दिखाई देने लगता है। जो अपरिग्रह के बारे में सोचता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी लेना नहीं है, उसको वैसा ही संसार दिखाई देने लगता है। दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जब जेल में थे तो उनका जो नाश्ता था वो थे 10 बादाम भिगो के। बादाम तो जो उनके साथी थे वल्लभ भाई पटेल, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना कम नाश्ता, ये भी कोई नाश्ता है। तो उन्होंने एक बार क्या किया, वो 10 बादाम की जगह 5 बादाम और डाल दिए, मतलब 15 कर दिए। तो उनको लगा इनको थोड़ी समझ में आएगा, 10 है या 15 है, थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। तो जब महात्मा गांधी ने देखा और कहा इसको गिनो, तो गिना तो वो 15 थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो 15 है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा उसमें क्या फर्क पड़ता है, 10 है या 15 है। महात्मा गांधी कहते हैं आपने मुझे एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ा दिया, क्योंकि उनका चिंतन निरंतर वैराग्य के ऊपर है, सत्य पर है, अहिंसा पर है, अपरिग्रह पर है, नॉन पोजिशन। तो उन्होंने कहा कि अगर 10 है या 15 है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो 5 है और 10 में क्या फर्क पड़ता है फिर, तो फिर 10 क्यों लेना है, 5 ही ठीक है उससे, तो फिर 10 की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है निरंतर कि मुझे सब कुछ कम कर देना है, भोजन कम कर देना है, जो कुछ सुख सुविधाएं है वो कम कर देना है, तो वो वैसे ही सोचने लगता है और उसको वैसे ही दिखने लगता है। वो कहते हैं कि अगर 10 और 15 में कोई भेद नहीं तो 5 और 10 में भी क्या भेद है, तो कल से केवल 5 ही ठीक है फिर। तो व्यक्ति जिस भी चिंतन में रहता है, जो भी सोचते रहता है, वो बाहर प्रकट होने लगता है सूक्ष्म रीति से। अगर व्यक्ति आत्मा के चिंतन में है निरंतर, तो बाहर धीरे धीरे वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। अगर व्यक्ति वासना के चिंतन में है, काम विकार के चिंतन में है, देह के चिंतन में है, तो वह न चाहते हुए भी वो बाहर सूक्ष्म रीति से प्रकट होना आरंभ कर देता है। इसके लिए हम दिन भर क्या सोच रहे हैं, एक एक संकल्प और एक एक सेकंड आज वरदान में है। नंबर 1 बिजनेसमैन, अर्थात जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यापारी उद्योगपति होता है, वो क्या करता है, कमाई का सोचते रहता है। क्यों, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज है कि जो केवल कमाई के बारे में सोचता है, क्योंकि वो बहुत लालची है, धन का बड़ा मोह है उसमें, बहुत कंजूस है वो। इसके लिए उसके लिए एक एक पाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें भी थोड़ा लालची बनना पड़ेगा, इसमें समय और संकल्प, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, तो फिर सब कुछ सहज हो जाएगा। एक एक संकल्प, सारा कार्य जो करना है, वाणी को छोड़ दो, कर्म को भी छोड़ दो। टीचर्स बहनों को कहा है आज बाबा ने, सेवाधारी कौन से हो तुम, संकल्प के सेवाधारी, मुख के सेवाधारी, पानी के सेवाधारी और कर्म के सेवाधारी। सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प के सेवाधारी। सारा हमारा कार्यक्षेत्र जो है वो संकल्प के ऊपर है। क्या संकल्प चल रहे हैं दिन भर? एक संकल्प, अगर सभी दुखों का कारण देहभान है, संसार में जो बेचैनी, दुख है, पीड़ा है, सबका कारण अगर देखा जाए तो अंत तो गत्वा वो आता है देहभान। अगर देहभान ही सभी दुखों का कारण है तो आत्माभिमान ही सभी सुखों का कारण हो सकता है। कारण को निवारण करो, कारण समाप्त तो माया समाप्त। अभी भी मुरली में आया था, कारण को हटा दो तो माया भी समाप्त हो जाएगी। तो कारण अगर देहभान है तो सारा चिंतन हमारा जो हो केवल आत्मा के ऊपर बैठ कर, केवल जैसे आज सुबह ही कुमुद बहन ने पढ़ा था ना कि आत्माभिमानी स्थिति है उसमें बाप की याद ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा को छोड़ दो, केवल आत्माभिमानी स्थिति में जैसे देह का चिंतन करते ही सब कुछ अपने आप आता है न चाहते हुए भी, तो क्या आत्मा का चिंतन करने से आत्मा के साथ जो कुछ है वो सब अपने आप आ जाएगा? आत्मा का चिंतन करने से परमात्मा स्वतः आ जाएगा, फिर परमधाम स्वतः आ जाएगा, श्रेष्ठ स्थिति स्वतः आ जाएगी, हल्कापन स्वतः आ जाएगा, बोल कर्म सब कुछ स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो सारा कार्य जो करना है वो संकल्पों के स्तर पर करना है, संकल्पों के तल पर करना है। संकल्प जो चल रहे हैं उसको आत्म केंद्रित करना है। कैसे? बैठकर एक है बाबा के कमरे में, एक है चलते फिरते ही केवल आत्मा के बारे में सोचना बस। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा की साइज शेप रहती कहाँ है, केवल ये सहज चिंतन, बैठे बैठे लेटे लेटे सोते सोते केवल आत्मा का चिंतन। आत्मा का चिंतन हमको देह के तल से ऊपर कर देता है, और इस चिंतन में जो कुछ होगा वो सब श्रेष्ठ होगा। नहीं तो व्यक्ति निरंतर देह के चिंतन में रहता है, देह 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 देह, देखता है स्त्री को पुरुष को, देह का ही चिंतन है। इसके लिए देह के चिंतन से स्वयं को ऊपर उठा देना। आत्मा का छोटा सा भी चिंतन अगर किया जाए तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, छोटा सा थोड़ा सा भी। केवल इतना सोचना कि मैं आत्मा, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे सुखा नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, ये आत्मा की परिभाषा है। ये आत्मा इतना सूक्ष्म है कि मृत्यु उसे आ नहीं सकती, ये इतनी ही बात उसको मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी। परंतु बार बार लंबा समय चिरकालीन यह चिंतन चलता है कि मैं आत्मा हूं, जैसे कि ये यहां नहीं है, अंदर बैठी है, अंदर से बैठकर जैसे हम यहां हैं और खिड़की से देख रहे हैं, तो ये यहां नहीं है, अंदर है, और वहां बैठ के चलते फिरते मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, सारा चिंतन आत्म केंद्रित। दिन भर रात भर सो भी रही हूं तो मैं आत्मा सो रही हूं, केवल शुद्ध आत्मा का चिंतन, मैं आत्मा हूँ कैसी श्रेष्ठ आत्मा। फिर वो सोमान वाली दूसरी बात है, सोमान जोड़ दिया, जोड़ देना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना, जो कुछ दिख रहा है वो सब ज्ञान से जोड़ते जाओ। अगर वृक्ष दिख रहा है तो वो कल्प वृक्ष है, हम चल रहे हैं कदम में कदम, हर चीज में आत्मा 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 आत्मा, और ज्ञान को भरते जाना, तो स्थिति स्वतः ही ऊपर उठते जाती है। और ये स्थिति इतनी सूक्ष्म चीज है कि बाहर से शायद दिखे भी ना, पर धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती है। जितना अंदर गहराई में जाएंगे उतना बाहर ऊंचाई आएगी। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, आत्मा के चिंतन से जितना गहराई में जाएंगे उतना बाहर ऊंचाई आती जाती है, व्यक्तित्व में, चरित्र में। तो बात कर रहे थे कि जो भी हम सोचते हैं वो वैसा ही हो जाता है। अगर हम सोचे कि ये ज्ञान योग का मार्ग सहज है तो वो सहज होगा, अगर हम सोचे कि ये बहुत मुश्किल है तो वो मुश्किल होगा, अगर हम पहले से ही सोच के रखे कि ये सहज है तो वो फिर सहज कैसे कैसे है वो हमको बार बार हर चीज पे दिखाई देगा। अगर हम पहले से सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन है तो उस चीज में हर जगह कठिनाई दिखाई देगी। हमारा जो ज्ञान है वो मनोविज्ञान है, पूर्ण मनोविज्ञान, कंप्लीट साइकोलॉजी। मनुष्य का मन किस तरह कार्य करता है उसके ऊपर बाबा ने सब कुछ कहा हुआ है। तो आज की मुरली की शुरुआत क्या कहा था बाबा ने? डबल विदेशी डबल भाग्यशाली। सभी डबल विदेशियों की बात नहीं है, जो सभी जो लेट आए हैं ये सब उनके लिए है। लेट मतलब 81, 81। साकार से बाद में जो सभी है। बाबा ने कहा डबल भाग्यशाली है, उसके कई सारे कारण बताए। डबल भाग्यशाली कहो या ये मार्ग सहज कैसा है, इसके बहुत सारे कारण बताए, पांच छह कारण टोटल बताए हैं कि किस तरह से ये मार्ग सहज है। अगर इस मुरली को छोड़ दिया जाए, मुरली की पॉइंट्स को बाहर करके हम पहले ये चिंतन करें कि ये मार्ग सहज कैसा है। मुरली के पॉइंट्स छोड़ के, इसमें हट योग नहीं है, एक घर बैठे कर सकते हैं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संन्यास उस तरह का लेने की जरूरत नहीं है, किसी विशिष्ट मुद्रा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और पहले तो ज्ञान को ले लो, योग को छोड़ो। सबसे पहले ये ज्ञान सहज क्यों है आज की मुरली का छोड़कर? कहीं पर भी कर सकते हैं, एनीवे ठीक है। यहाँ केवल खेल स्मृति और विस्मृति का है, बस बुद्धि का काम है। यहाँ कुछ स्थूल करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ सारा कार्य इधर हो रहा है। वैराग बुद्धि का, वैराग देहद का, वैराग सब कुछ यहाँ हो रहा है, जो कि व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर कर सकता था। एक व्यक्ति था जो गृहस्थी था, वो गृहस्थी तो था पर उसकी जो वैराग वृत्ति तो इतनी ज्यादा थी कि सन्यासी भी उसके आगे फेल थे। इतना जबरदस्त एक गृहस्थी था, भक्त था, और उसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत बड़ी भक्त, उसके जो एक बेटा या बेटी वो भी वैरागी स्वभाव, पूरा परिवार जैसे मोहजीत राजा की कहानी है ना, तो उस तरह का वो परिवार था। तो एक बार एक अहंकारी सन्यासी उसके सामने घर में आता है। सन्यासियों को अहंकार होता है अपने सन्यास का, वैरागी का। वो उसको उसकी पूजा वगैरह करते हैं, वहाँ प्रवचन वगैरह होता है। एक दिन उसको कहता है कि तुम सन्यास क्यों नहीं ले लेते। वो तो किसका सन्यास लू, पहले से ही सन्यासी है। ये तो सन्यास लेना होता है, विरोध भाव प्रकट कर रहे हैं अपने अंदर, ये संसार और ये मैं, विरोधाभास, विरोधा मतलब विरोध में खड़ा है संसार के सन्यासी। ये संसार है, इसके विरोध में मैं हूँ। ये जो है वो वही है पर वहां है ही नहीं, कमलवत। किसका सन्यास? तो एक तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान सहज क्यों 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 है? हाँ, कठिन भाषा सरल है ना, सरल भाषा में है ये पढ़ाई। इसमें कोई श्लोक नहीं है, क्लिष्टता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। इसमें छोटे छोटे शब्द है, सिंपल सिंपल से शब्द है, सहजता है पढ़ाई में भी। छोटे छोटे वाक्य है, कोई कोई बड़े भी है, वाक्य छोटे छोटे हैं, और पढ़ाई का सार तो सबको ही पता है। आत्मा समझकर बाप को भी आता है। अगर ये किसी को भी अनपढ़ से अनपढ़ जो है उसको भी पूछा जाए तो इस पढ़ाई का सार वो बता सकता है। तो एक तो ये भाषा की बात, दूसरा एक घंटा चलो निःशुल्क है ये पढ़ाई, सहज है, निःशुल्क है। अच्छा, बच्चे बूढ़े सब पढ़ाई, सब पढ़ते हैं, अनपढ़ बुजुर्ग सब सब सब। पहला पार्ट अंतिम पार्ट है, 7 दिन में सारा हो जाता है कोर्स।
कहानी के रूप में
नहीं, आज की मुरली के नहीं, दूसरे दूसरे आज की मुरली अभी हमने चालू नहीं की है। इसमें जो सत्य की जो खोज है हर आत्मा में रहती है, उसकी तृप्ति होती है, इसके लिए स्वयं के बारे में जानने की जो अभी इच्छा है वो यहाँ पूर्ति होती है, इसके लिए सहज है। कभी भी ज्वाइन किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये जनवरी में खुलेगी और वो स्कूल जैसे है ना वही एडमिशन, ऐसा नहीं कि उधर से आप कभी भी बीच में एडमिशन नहीं ले नहीं सकते बाहर की। इसमें
कभी भी ले लो,
कभी भी एडमिशन ले लो,
कैटेगरी भी
और
लिख
कहीं भी
सकते
ले लो,
हैं।
कहीं भी रेगुलर। अगर कोई आज से ही रेगुलर हुआ तो भी, अभी अभी 18 जनवरी की मुरली, तो अभी पास की लिस्ट में, रेगुलर की लिस्ट में आ गया, आज ही रेगुलर हुआ है, एक ही दिन का रेगुलर है, पर वो भी रेगुलर है। तो ये अभी भी बोली जा रही है ये बात पढ़ाई की। तो और ये पढ़ाई सहज क्यों है?
थ्योरेटिकल कम है,
अनुभव नहीं, वो आज का मुरली है।
थ्योरेटिकल कम है,
थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। चलो ये अच्छी पॉइंट है। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, सब एक ही होमोजीनियस, सब लोग बैठ जाओ एक ही क्लास में। कोई बूढ़ा भी है 50 साल 60 साल वाला, से ज्ञान वाला, तो आज एक दिन वाला भी है। बाप ही टीचर बना हुआ है।
इधर से आवाज आ रही है, कभी भी छुट्टी ले सकते हैं।
कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा, विशेष मिलन मनाने आते हैं। लोग कहेंगे कि स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, तो
सबको एक जैसे पढ़ाते हैं,
सबको एक ही जैसा पढ़ाता है। ऐसा नहीं किसी को स्पेशल ट्यूशन नहीं है, इधर सब समान। तो ये पढ़ाई सहज है, फिर ये योग सहज क्यों है? कैसे है? चलते फिरता है, सोते सोते, चलते फिरते, बीमारी हालत, सर्व
संबंध।
नहीं, आज वो आज की मुरली का पॉइंट है, आज की मुरली के बाहर का। ये योग सहज
की मुरली याद है कि नहीं, हम
आज की मुरली से, आज की मुरली को छोड़कर योग सहज की है। इसमें वो हमने बोल दिया है, मुद्रा, कोई ऐसा प्राणायाम, श्वास प्रश्वास, वो रेचक, वो सब नहीं है। इधर से पानी डाल के इधर से निकालना, बुद्धि,
और योग में ज्ञान है, ज्ञान युक्त योग है,
ज्ञान युक्त योग है। जो ज्ञान अगर कर आ जाए बुद्धि में, तो योग स्वतः है। और इस गुरु, इस ज्ञान, इस योग में कोई मनुष्य गुरु की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो गुरु करना पड़ता है। उसके सिवा गुरु के प्रशिक्षण में ही सीखा जा सकता है। हाँ, वो मंत्र विंत्र सब देते हैं कान में, वो सब नहीं है इधर। और सब प्राप्तियाँ एक योग में हो जाती है। चलो ठीक है, तो एक तो ये, और कुछ वो आज की मुरली से पॉइंट है। हाँ, वो स्वतः ही हो जाता है, वो आज की मुरली से है वैसे पॉइंट। चलो ठीक है, चलो आज की मुरली। तो बाप दादा किससे मिल रहे हैं? डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। डबल विदेशी बच्चे डबल भाग्यशाली है, क्यों? एक तो अधिकारी और दूसरे उम्मीदवार। अधिकारी किसके? बाप के बाप को जाना और वर्ष के अधिकारी बने। एक तो अधिकारी बने और दूसरा लास्ट, पास्ट और फर्स्ट, इसके उम्मीदवार। तो लास्ट, फास्ट और फर्स्ट, पहले वालों ने क्या किया? मेहनत, मनन और मक्खन, और ये बने बनाए पर आ गए। भोजन अभी बस खाने के समय, बस परोसने, परोस रहे थे तब आ गए। उसके सुबह से जो मेहनत चालू थी बनाने में, सब्जी वब्जी काटते, तो मनन किसी और ने किया, मक्खन निकाल के रखा हुआ है, मेहनत और ने की है, समय पर आ गए, बस मेहमान की तरह आ गए, ले लो। परंतु जिसने मेहनत की है, जिसने मनन किया है और जिसने मक्खन निकाला है, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति और उसकी, वो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, ऊंचा ही रहेगा। उसमें जो रस है वो केवल परोसा हुआ खाने में नहीं, खोया, स्वयं मेहनत करके कमाना, स्वयं मेहनत करके बनाना और फिर खाना, उसमें जो आनंद है वो कोई दूसरा ही आनंद है। नहीं तो संसार में देखो, कुछ भी चीज आज तो मेहनत कम है, सब मशीन से बनता है। पहले हर चीज जो होती थी ना, अगर कोई मोची है, वो कोई चप्पल अगर बनाए, तो उसको कितना गर्व रहता है कि मेरी बनाई हुई चप्पल पहनी है। अगर कोई कपड़ा किसने बनाया है तो उसको गर्व रहता है कि मेरा बनाया हुआ बुना हुआ स्वेटर इन्होंने पहना है। खुद की बनाई हुई चीज का थोड़ा सा ये रहता है गर्व रहता है। आज तो मशीनी मशीन है सब जगह, वो कम हो गया है थोड़ा। तो मेहनत की, मनन किया और मक्खन निकाला और ये समय पर आ चुका। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बना बनाया मिल गया, फिर दूसरी बात, एक पहली बात तो ये है, छह बातें तो चार या पांच बातें हैं टोटल। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात उन्होंने जो अनुभव है, अनुभव का सहयोग, अनुभव की सेवा, उन्होंने अनुभव की सेवा की, अपना अनुभव दूसरों को सुनाना, ये सेवा, ये एक सेकंड पॉइंट है अनुभव वाला। तो महारथी जो निमित्त बने हुए अनुभव की, जिन्होंने सेवा की, तो हमें भी क्या करना है, अब क्या करना है पूछा ना वहां पर बाबा ने कि तुम्हें भी अनुभव से सेवा करनी है। हमारे पास जो भी कुछ अनुभव है उस अनुभव से दूसरी आत्माओं की सेवा करना। तो यहाँ पर हर ज्ञान की पॉइंट केवल पॉइंट नहीं है, अनुभव की पॉइंट है। इतना अच्छा बात बोली है, जो भी पॉइंट्स यहाँ है वो पॉइंट है ही नहीं, वो अनुभव है ज्ञान का। मुरली की पॉइंट पॉइंट नहीं है, उसको पॉइंट रूप में नहीं देखो, अनुभव के रूप में देखो। तो इस कारण से सब कुछ सहज है। अगर केवल ज्ञान होता तो उसको पढ़ना, याद रखना, मेमोराइज करना वो मुश्किल काम है थोड़ा, परंतु ये अनुभव जिसने कर लिया उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर कोई हम कहीं एक जगह गए, एक कोई फॉर एग्जांपल कश्मीर, अगर किसी को कहा कश्मीर के बारे में सब कुछ तुमको बताना है और वो दे दिया लिटरेचर, ये है कश्मीर पढ़ो, तो कितना मुश्किल है उसको एक एक चीज एक एक वहाँ का पढ़ना। पर वो अगर खुद जाके आए और उसको कहे कि अनुभव सुनाओ तो सारा सुनाएगा, फिर हम इधर गए, फिर वहाँ ऐसा था, फिर वहाँ ऐसा था, फिर ये देखा, फिर वे देखा, सब कुछ सहज है उसके लिए। अगर किसी को बाहर वाले को किसी को कहो कि माउंट आबू कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है, ब्रह्मा कुमारी का क्या क्या है वहाँ पे, वे बताओ, तो उसको सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा और कुछ पढ़ेगा, कुछ याद रहेगा, कुछ बताएगा। और जो यहाँ एक बार घूम के गया एक ही दिन तो उसको वो सहज याद आ जाएगा। तो इसके लिए ये ज्ञान की पॉइंट नहीं है, ये अनुभव की पॉइंट, हर पॉइंट का अनुभव, हर पॉइंट का अनुभव, ये दूसरी दूसरा कारण है जिसकी वजह से सहज है। तीसरा कारण, पहली बार नहीं सुना, बार बार सुना है, रिपीट कर रहे हैं। अभी चलो ये पॉइंट ले लेते पहले, रिपीट, क्योंकि ये जो भी सुन रहे हैं पहली बार नहीं सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, परंतु ये तो हो गया थियोरी, फिर भी इसको अंदर ही अंदर चिंतन करना कि ये जो भी मैं सुन रहा हूँ ये नया कुछ भी नहीं है, ये मेरा पहले से ही सुना हुआ है, ये पहले से ही मेरा जाना हुआ है, ये पहले से ही सुना हुआ है, ये पहला मुझे, ये इसमें जो भी बातें आ रही है मैंने पहले की कर चुका हूँ, अनुभव की हुई बातें, इसके लिए नया कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत बार मतलब हमको भी, जो भी साधक होता है, जैसे गीता में पूछा है अर्जुन ने कि हे गोविंद, उसका क्या होता है कि जो साधना भ्रष्ट हो गया, साधना करते करते अचानक मृत्यु हो गई, अभी उसका क्या होगा? वो कहता है कि उत्तर में है कि अगले जन्म में वो वहीं से अपनी साधना को फिर से आरंभ करेगा। जैसे कोई अहमदाबाद में कोई बच्चा पढ़ता है 5वीं कक्षा में, उसके पिताजी की ट्रांसफर हो गई माउंट आबू में, वो कहाँ एडमिशन लेगा? छठवी में, 5वीं पूरी हो गई उधर, इधर एडमिशन कहाँ लेगा? वो 6वीं क्लास में एडमिशन लेगा, वो पीछे नहीं जाएगा। इसके लिए आत्मा अगर साधना कर रही है आध्यात्मिक और अचानक योग भ्रष्ट या किसी कारण से मृत्यु हो गई, तो नेक्स्ट जन्म जहां पर भी होगा वो वहीं से साधना आरंभ करेगा। एज नहीं, एज की बात नहीं चल रही है, एज की बात नहीं। अगर कोई 50 साल का योगी है, 50 साल जिसने योग की तपस्या की है, साधना की है, अभी ऐसा जो योगी है जो एकदम अनासक्त है, जिसमें संसार के प्रति वैराग्य भाव है, जो इस संसार के भी मोह ममता और वासनाओं में कभी लिप्त नहीं हुआ है, उसको पसंद ही नहीं है, ऐसे योगी की अगर मृत्यु हो गई, अब वो जहां भी जिस भी घर में जाएगा थोड़े ही समय में संसार से बाहर निकल जाएगा, उसकी साधना फिर से आरंभ हो जाएगी, वही अवस्था, वो आत्मा, वो सारे संस्कार वहां लेके आई, उसको तो बस एक सद्गुरु की तलाश है जैसे मनुष्य की, कि वो उसको आ जाए उसके जीवन में और उसको मार्ग दे दे, जहां से वो छोड़ेगा वहीं से वो पकड़ के आगे निकल जाएगा। इसके लिए छोटी छोटी कन्याएं जो सेंटर पे आती है, उनको ये नहीं समझो कि ये छोटी है बहुत, ये यहाँ जो छोटे छोटे सेवाधारी आते हैं उनको ये नहीं समझो, पता नहीं उसने क्या कैसी भक्ति की होगी और कैसी तपस्या और कैसा वैराग होगा, जो वैराग हम में नहीं है वो उस छोटे से बालक या कुमारी में हो सकता है, कहाँ से छोड़ा और कहाँ से पकड़ा है ये महत्वपूर्ण है।
तो बच्चे
वो कोई ऐसे ही नहीं सुना सकता है कोई, वो साधना है उसके साथ, वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार के रूप में है, वो बस निकल के वहां से वो शुरुआत कर देता है। तो ये जो बात है कि हमने ये ज्ञान सुना हुआ है और ये केवल रिपीट हो रहा है, इसका केवल ये अनुभव करने की बात है। मुझे अपना ही याद है कि मतलब हम जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और करते करते ये जो अध्यात्म की जो किताब है और ये सारा जो क्षेत्र है, ये जैसे इसमें एंट्री किया तो मुझे लगा ये सब तो पहले ही पता है, ऐसा लगा ये सारा ही मेरा पढ़ा हुआ है, इसमें ऐसा नया कुछ भी नहीं है, एक एक के बाद 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 एक एक संस्था, ये संस्था पूरी हुई, दूसरी संस्था पूरी हुई, तीसरी संस्था, ये किताब वो किताब वो किताब ये किताब, एक के बाद इतना कितनी किताबें एक के बाद आती गई, पर मुझे लगा ये इतनी मोटी किताब है, इसको ऐसे घुमाया और ये मुझे पता है पहले, अभी केवल रिवाइज कर रहा हूँ, ये एक सूक्ष्म अनुभव था। बता रहा हूँ अनुभव बता रहा हूँ एक, ये जो भी है ये मुझे पता है, ये कुछ भी नया नहीं है इसमें से, मतलब ये ज्ञान तो था ही नहीं ब्रह्मा कुमारी नहीं, बाकी संसार का जो ज्ञान है या अध्यात्म का, तो वो जैसे वो गीता है, हमने मुझे याद है वो हमने सबसे पहली बार एक बार सुनी, प्रवचन चालू था, हम तो साइकिल से ऐसे ऐसे जा रहे थे तो देखा गीता प्रवचन, अंदर जाके बैठ गए वहां पे, वो चिन्मय मिशन का गीता प्रवचन, एक सन्यासिनी थी, वो नौवा अध्याय वहां चालू था, तो वो सुना तो मुझे लगा ये तो पता है, इसमें नया तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि कभी सुना नहीं था। तो स्मृतियां सारी है आत्मा में, नया कुछ नहीं करना है उसको, बस एवरी वन इज द सुपरमैन, ये बनना नहीं है बट इट इज टू रियलाइज इट, केवल रियलाइज करना है कि वो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ये ज्ञान हमें पहले ही था, हम इसको रिपीट कर रहे हैं, महान आत्मा हम पहले से हैं, अब याद कर रहे हैं। मुरली भी पढ़ो तो यही संकल्प करके सोचो, ये नहीं सोचो 8 पेज की अरे बाप रे, 9 पेज की अरे बाप रे, ये सोचो ही सोचो कि ये मुझे पहले ही पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, और इसमें जो है वो मैं पहले ही कर रहा हूँ, जो अभ्यास उसमें है वो मैं मुझे पहले ही पता है, बस यही सोच के उसको पढ़ना तो वो सहज है। अगर पहला ही संकल्प ये है अरे बाप रे, पहला ही मुरली अगर किसी को दिया तो पहला काम हर एक करता है कितने पेज
सारा ही भूल जाता है,
पेज कितने ये संकल्प ही बस ब्लॉक कर देता है माइंड को, ये संकल्प आना और ब्लॉक हो जाना, बस उसमें ऐसा कुछ नया कुछ भी नहीं है, हर चीज हमें पता है, यही पहले से सोचना ये मुझे पता है, ये पहले से ही मुझे पता है ऐसा। इसमें मुझे ये भी याद है जब हम मेडिकल में मतलब इंटर्नशिप जब चालू हुआ हमारा, तो उसमें नई नई प्रोसीजर्स थी कि जो हमको कभी की नहीं, जैसे प्लास्टर एक बार लगाना था तो हमने तो कभी देखा भी नहीं और लगाया भी नहीं, पर एक मरीज आया फ्रैक्चर के साथ तो हमने लगाना चालू कर दिया, वो शायद थोड़ा गलत लगा, फिर उसको ठीक किया, परंतु वो जैसा वो जो कॉन्फिडेंस जो रहता है ना कि ये मुझे पता है, और अभी एक गलती पर तुरंत ठीक कर दिया उसको, मतलब यह ज्ञान कि ये मुझे पहले ही पता है, अहंकार की बात नहीं है, परंतु ये अंदर की अपनी सूक्ष्म अवस्था है, ये जो मुरली में है बहुत सारी बातें मुझे पता है, मैं इसे केवल अभी मुझे रिवाइज करना है, ये सोचो ही नहीं मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत बार पढ़ी है और मुझे पहले से पता है, और अभी खाली रिवीजन। तो दूसरा तीसरा पॉइंट था रिपीट। चौथा पॉइंट, ये ज्ञान कैसे सुनाते हैं बाप? कहानी के रूप में सुनाते हैं। जब भी कोई कहानी होती है तो उसको याद रखना सहज है। बाकी बाकी चीजें अगर दे दिया जाए, जो भी मेमोरी ट्रेनिंग की जितनी क्लासेस होती है उनमें एक ही चीज समझाई जाती है, कहानी बना दो हर चीज। जैसे आपको 10 वस्तु यहाँ दी गई है, 10 वस्तु में एक है सोफा, एक है मोबाइल, एक है टेबल, एक है शॉल, एक है स्वेटर, एक है रूम, एक है वॉच, एक है पोस्टर। ऐसी लिस्ट दे दी 10 चीजों की, और आपको कहा गया इनको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, तो कैसे रखेंगे? तो फिर उसको कहानी बना दो। कैसे कहानी बना दो? एक टेबल है, टेबल के ऊपर मोबाइल रखा है, मोबाइल के बाजू में एक सोफा है, सोफा में मैं बैठा हूँ, मेरे पास एक शॉल है, मैं उधर देख रहा हूँ, वहाँ घड़ी है। तो ये कहानी हमने तैयार कर ली। अभी नेक्स्ट टाइम कोई कहे क्या था तो वहाँ से चालू करो। जैसे एक लिस्ट दे दी, ये मार्केट से इतनी चीजें लानी है, 5 किलो गोभी लानी है, टोमेटो लाने हैं, ये लाने, एक बड़ी 20 की लिस्ट दे दी। अब इसको कैसे याद रखे? तो वहाँ उसको कहानी बना दो, हर चीज को कहानी में कन्वर्ट कर दो। जो भी कुछ भी रेडिकुलस इधर उधर कैसे भी करके, तो वो सारी जो चीजें वो कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट चीजें याद नहीं रहती है, उसको पिक्चर, माइंड जो है ना उसको पिक्चर चाहिए। शब्दों को याद नहीं रख सकता है, वो उसको पिक्चर में ट्रांसफर कर दो। पिक्चर्स विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन भी कैसे करना है? कलरफुल। नहीं, वो पास में तो नहीं आएंगे। ये एक से लेकर 100 तक है। वो खाली इसके लिए नंबर्स याद नहीं रहते, उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देना पड़ता है। विजुअलाइज करना है हर चीज जो है ना। मुरली पढ़ना नहीं है, मुरली देखना है। डू नॉट रीड, सी इट। पढ़ना नहीं है, उसको देखना है। और कहाँ से देखना है? इन नैनों से नहीं, अंतर मन से, मन की आंखों से देखना है। इतना स्पष्ट देखना है और उसको पिक्चर के रूप में बना देना है और उसमें कलर भरने हैं। जो हम मन से देखेंगे वो परिस्थितियां वैसी निर्माण भी होगी, परिस्थितियां वैसे ही निर्माण होगी जैसा हम चाहते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के सारे प्रिंसिपल्स है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आकर्षण का नियम। जो भी हम सोचेंगे, अगर हम जैसे उदाहरण दिया है कि एक महिला है, मार्केट में गई है और बहुत कीमती पर्स है, वो सोचती है इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, पर वो सोचती है चलो थोड़ा अवचेतन मन की जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। वो सोचती है ये पर्स मेरी है, अपने अंतर मन में ये संकल्प देती है कि ये जो पर्स है ये पर्स मेरी है, बिना कोई एक संशय डाउट कुछ नहीं, बस वही रखती है, ये पर्स मेरी है, ये पर्स अब मेरे पास है, या अभी मैं इस पर्स में ये रख रही हूँ, फिर मैंने इस पर्स से ये निकाला, जैसे कि वो अपनी चीज है। फिर घर पहुंचती है, शाम को उसका भाई विदेश से आता है, वही पर्स उसको गिफ्ट में दे देता। जो चीज को हम स्वीकार कर लेंगे, हमारा संकल्प प्रकृति में जाएगा, प्रकृति एटमोस्फियर और संकल्प की रिएक्शन, और वैसी ही परिस्थितियां निर्माण। हम सोचेंगे मैं बहुत बीमार हूँ, संकल्प गया प्रकृति में, बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियों को आकर्षित करेगा और एक नई बीमारी आ जाएगी। सोचेंगे मैं स्वस्थ हूँ, प्रकृति में गया, आप ही वो स्वास्थ्य की जो अवस्था है अंदर आ जाएगी। जैसा संकल्प है वैसा ही क्रिएट होता है। ये सारे प्रिंसिपल्स है छोटे छोटे सबकॉन्शियस माइंड के। तो कहाँ थे हम?
कहानी
के रूप में बाबा ने ज्ञान कहानी के रूप में सुनाया है, परंतु हम कहानी के रूप में देख रहे क्या? बात हो गई। जैसे आज की मुरली सहज योग पर है। सहज योग क्यों है वो कारण बताए। अच्छा, फिर मुश्किल क्यों हो जाता है उसके कारण बताए। अच्छा, वो जो मुश्किल हो जाते हैं फिर उसका निवारण क्या है वो कारण बताए। तो ये जैसे एक कहानी है, इसको इस रीति से लेना तो वो बुद्धि में बैठेगी लंबे समय तक। ये कोई ऐसा तो नहीं है ना, आज की संडे की मुरली आज के आज शाम में क्लास करो और उसको रिवाइज करो और दूसरे दिन खत्म, ऐसे ही होता है ना? दूसरे दिन कोई पढ़ता है क्या संडे की मुरली? मंडे को आज तक किसी ने पढ़ा? ताजी चाहिए, अभी आज की चाहिए, उसको कहो लो कल की ले, कल की तो बिल्कुल नहीं, आज की होगी तो दो। क्यों? तो माइंड जो है ना उसको क्रिएटिविटी नया नया चाहिए रहता है, वो तो एक दूसरी बात है। तो यहाँ पे ये एक बात है। अच्छा, ये होगी चार बातें। पांचवी बात सहज क्यों है, फिर बाबा ने यहाँ दोनों चीजें जोड़ी, प्राप्ति को देखो, योग को देखो, याद को देखो। याद भी कैसी है, नजदीक संबंध वाले की याद स्वतः होती है, प्यार होता है, वहां पे करना नहीं पड़ता है, स्वतः आती है। तो ये भी नजदीक संबंध है, तो यहाँ है संबंध। पांचवी बात। छठवी बात, प्राप्तियां है, इस योग से ये प्राप्तियां, इसके लिए ये सहज है। फिर ज्ञान और योग एक ही शब्द है, आप और बाप, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। फिर आपका ज्ञान और आपका योग, ज्ञान भी 7 दिन का कोर्स और योग शिविर, सिकिलदे बच्चे ये सब कराते हो। तो जैसे गागर में सागर को समा दिया, सागर को उठाना मुश्किल है, गागर को उठाना मुश्किल नहीं है, सहज है। परंतु अगर इतना सब सहज है तो मुश्किल क्यों? प्रश्न ये है,
ये अपना नहीं समझते ना?
अपना नहीं, किसको अपना नहीं समझते?
ये बाबा बताते हैं, ये अपना तो अपना नहीं समझते, कोई मुश्किल लग सकता है।
अच्छा,
बाबा का ज्ञान है, बाबा की बात
है, अपना नहीं समझते, तो अपना समझो अभी इसको।
ये कैसे?
तो सारे ही ज्ञान को ये तो कुछ ही बातें यहाँ चार पांच निकाली है बाबा ने, परंतु इसका बार बार अपने मन में ये संकल्प दे दो कि ये सहज है, ये संकल्प अंदर दे देना। जैसे वो महात्मा गांधी की कहानी बताई ना, ये जैसा हमारा संकल्प रहेगा फिर वैसा ही दिखाई देगा। अगर संकल्प कठिन का है तो कठिन दिखाई देगा, बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, सुलभ है, बस ये संकल्प दे अपने मन को एक। फिर उसके बाद में मुश्किल क्यों, इसके दो कारण बताए, पहला व्यर्थ संकल्प और दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे पे पहले आते हैं। तो दूसरा जो है भूल जाते हैं, कब भूल जाते हैं? समय पर भूल जाते हैं। लिखा कहाँ रहता है? डायरी और बुद्धि में, परंतु समय की डायरी में दिखाई नहीं देता, समय पर याद नहीं आता। समय पर क्यों नहीं याद आता है? जैसे किसी को एक भाषण दिया जाए, भारत स्वतंत्रता पर एक भाषण है, स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण दिया गया, उसको अभी 1 घंटे पहले दिया गया भाषण, 1 घंटे बाद बोलना है, फटाफट याद करेगा, और टाइम पे भूल जाएगा, थोड़ा याद रहेगा और भूल गया, क्योंकि उसको समाया नहीं है पूरा। रग रग में अगर समा जाए तो वो स्वतः ही निकलेगा। अच्छा, ये फिल्म स्टार और फिल्म एक्टर्स होते हैं, उनके डायलॉग अगर आज बोलने लगाओ ना, उनके 20 साल पहले की फिल्म के, वो भी उनको याद रहते। कैसे? हमको कोई डायलॉग याद करने बोलो तो हम तो भूल जाएंगे, उनको बहुत याद रहते। पूरा वो उसमें समा जाते हैं, इसके लिए वो उनसे भूलता नहीं है। जैसे हमको आधी रात में कोई उठाया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुरंत हमको याद रहता है, क्योंकि उसको हमने अंदर समा लिया है, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। बाकी ये जो ज्ञान है ना, इधर कॉन्शियस माइंड में है, खाली सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया है। इधर अगर चला जाए तो फिर भूलने का सवाल ही नहीं है, समा जाए इधर। तो भूलने का कारण बाबा ने क्या बताया? भूल जाते हैं, समय की डायरी पर नहीं तो दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए क्या करो? चार चीजें करो, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को क्या करो? रिवाइज करो, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये जो है ना यही वो है। इसके लिए ज्ञान के ऊपर रुचि और रस जिनका कम है वो योग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बुद्धि में बहुत ज्ञान चाहिए योग के लिए, थोड़े बहुत ज्ञान से नहीं होता है, बहुत ज्ञान चाहिए। इसके लिए ज्ञान की पॉइंट निरंतर बुद्धि में हो और उसको रिवाइज करते रहे। ये ज्ञान ऐसा है कि एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है, बार बार रिवाइज करो। एक दूसरा, अनुभव में लाओ उसको, रिवाइज करो, अनुभव में लाओ। जैसे आज की मुरली की एक पॉइंट है, हमने सुबह सुबह जो आज हमने पढ़ी, जो संकल्प और सेकंड वेस्ट नहीं करना है, बिजनेसमैन वो है, ये एक पावरफुल पॉइंट है, और बस सारे दिन भर उसी पे काम किया आज। तो हमने देखा कि आज दिन भर एक भी समय, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं तो समय कितना वेस्ट होता है। बस जो अपने महत्व का कार्य का है उतना गए, किया और आउट, वहां से निकल के अपने कार्य आत्मिक स्थिति में स्थित। बाबा ने कहा इसमें सब रसनाएं हैं, आत्मा में ही सारे सुख है, आत्मा में ही सारी रसनाएं हैं, आत्मा में ही सारा आनंद है, इस संसार में आनंद नहीं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वहां पर सब कुछ है, बाहर का सारा सुख सीखा है इस सुख के आगे, पर इस देह के सुख से ऊपर उठना पड़ेगा आत्मा को। ये जो देह का जो सुख है, भोजन, घूमना फिरना, बातें, ये सारा जो कुछ है शरीर का क्षेत्र, इससे ऊपर जब तक आत्मा नहीं उठती तब तक उसे वो अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव बहुत सूक्ष्म है। तो सबसे पहला रिवाइज करना, दूसरा अनुभव में लाना, तीसरा चेक करना। ये दो भी कर लेते हैं परंतु तीसरा मुश्किल है, चेक करना। चेक करना भी मुश्किल है और उससे भी मुश्किल है चेंज। मुश्किल हम नहीं कहेंगे फिर से तो मुश्किल हो जाएगा वो, परंतु वो आसानी कहो उसको। तो ये सारी स्टेप्स है, चेक करना। किसको चेक करना? दूसरों को नहीं, हमको, अपने आप को। ये आज की मुरली है, ये मुरली से मुझे क्या ये ज्ञान और योग तो सहज लगता है या ज्ञान सहज लगता है, क्या सहज लगता है? अच्छा, योग अभी भी मुश्किल क्यों है? ये स्वयं का स्वयं प्रश्न है। पापा ने कहा ये चार चीजें करो तो क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट नहीं होगा, मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तो ये यहाँ पूरा किया। फिर बाबा ने यहाँ, ये तो फर्स्ट था, सेकंड था, अभी फर्स्ट पॉइंट क्या था? मुश्किल क्यों है? व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार उनके कारण मार्ग में बंधन रुकावट बन जाता है। तो क्या करते हैमर से समस्याओं को तोड़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए था, आखिर कब तक? और ये मुश्किल है, ये चार प्रश्न है। वो आखिर में क्यों वही है पहला वाला। तो ये क्यों हुआ? होना नहीं चाहिए था, कब तक होगा ये? और ये जो है ना, ये क्या है? बाबा ने कहा ये सब है व्यर्थ संकल्प से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ना। तो क्या करो? इसमें एक ही शब्द है, ड्रामा। उसमें लगता है एक सेकंड, इसमें लगता है दिन और मास। दिन मास नहीं, साल, एक साल नहीं, कई साल गुजर गए इसी में, यही सोचते सोचते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अंग्रेजी में एक किताब है वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, बीमार पड़ता हूं तो मैं ही क्यों, सहन मुझे ही क्यों करना पड़ता है, अत्याचार होता है तो मेरे ऊपर ही क्यों होता है, सबको मिलता है मुझे ही कम क्यों मिलता है, हर चीज में मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सब जा रहे हैं नीचे मैं ही ऊपर क्यों रहूं। हमारे पास एक डॉक्टर थे, बीके डॉक्टर, एक बार बाबा का अवतरण नीचे था, उनकी ड्यूटी लग गई, दूसरे दिन रिजाइन करके चले गए। भगवान नीचे आ रहे और मैं इधर ऊपर, नो। तो मैं वाय, ये जो वाय है ना, मैं क्यों, क्यों, कहाँ तक, कब तक, मुश्किल है, ये सारे क्या है पत्थर। इसको किससे समाप्त करो? एक शब्द। आज मुरली में दो शब्द बताए, एक तो ड्रामा शब्द है और दूसरा जादू का शब्द है बाबा। किससे कहो?
जिगर।
दिल नहीं, जिगर से कहो। दिल तो बाद में कहा, पर जिगर से कहो बाबा। तो उससे क्या हो जाएगा? जादू का शब्द है, जो भी बातें आती है बातें समाप्त हो जाएगी, जो भी बातें आती है बाबा को वो सौंप दो, दे दो, वो बाद में है। यहाँ था शब्द है ड्रामा, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा में जो हो रहा है सत्य है, ड्रामा में जो हुआ वही होना चाहिए था, ड्रामा में सभी एक्टर संपूर्ण निर्दोष है, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा बाप को पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए, ड्रामा न्यायप्रिय, न्यायशील, न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, इसमें कहीं नुकसान नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है इस ड्रामा में। कैसा है? सत्य है, नहीं सत्य बोल रहे, बना बनाया बन रहा है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सकता है, अदली बदली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। एक आत्मा यहाँ किसी का पार्ट चेंज नहीं हो सकता है। ये सारी ड्रामा की पॉइंट है। ये ड्रामा की पॉइंट आते ही चित्त शांत होता है, नहीं तो इस माइंड को कैसे शांत करे। तो ये पूछता है ये ऐसा क्यों, इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। कौन क्या उत्तर देगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो निर्दोष हूं, मुझ पर ये आरोप क्यों लगाया गया, इसका क्या उत्तर देंगे आप। मुश्किल है। इसके लिए ड्रामा का एक सेकंड और वो सारे जो है वो मन साल लग जाते। ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करते हैं, तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। बाबा ने कहा मजदूरी नहीं करो, बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह, तिलकधारी, तख्तधारी, तख्त नशीन, ताजधारी, ये सब बनो। तो हाँ हाँ, तो ये समस्या शब्द ही नहीं आए, इसको ही हटा दो, नहीं तो फिर उसका निवारण करो। ये सब चक्र है, फिर उसमें नहीं जाना। हाई जंप लगा दो एक ड्रामा शब्द से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए ड्रामा के पाठ को बार 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 रिवाइज करते रहो। जो चल रहा है ये सब एक्टर्स है, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, इसका ये ऐसा ऐसा पार्ट है और वो अपना पार्ट अच्छा कर रहा है। इसके लिए मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जिस किसी को रावण का पार्ट मिला है वो रावण का ही पार्ट प्ले करेगा, किसी को राम का है वो राम का ही करेगा। लक्ष्मण इस बात से अगर दुखी हो जाए कि रावण इतने जोर जोर से क्यों हंसता है, तो उसको दुखी होना पड़ेगा। उसे यही सोचना पड़ेगा ये रावण है और इसका यही पार्ट है। हाँ, उसका जोर जोर से हंसना ही है उसको।
अगर वो नहीं हंसा तो सोचेगा क्यों नहीं हंस रहा।
इसके लिए हर आत्मा अपने अपने संस्कार, ये मधुबन में जो आ रही आत्मा है, जो आई है, वो अपने संस्कारों के साथ आई है। इस जन्म की नहीं, जन्म जन्म के संस्कार लेकर आई है साथ में। जैसे नीचे भी शांतिवन में आते हैं तो अपनी दिनचर्या लेके आते हैं उधर से संसार की, फिर एक दिन तो लगता है सेट होने को। वहां पर वहां सेट हो जाए उसके बाद ही इधर आना चाहिए ऊपर। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि पहले आए तो डायरेक्ट इधर ना आए, एक दिन पहले शांतिवन में रहे और फिर ऊपर आए, ताकि उधर की जो दिनचर्या है वो थोड़ी उधर थोड़ी सी सेट हो जाए। सीधा इधर आ जाते तो एकदम कंट्रास्ट हो जाता है, क्योंकि हर आत्मा अपनी दिनचर्या साथ में लेके आता है। तो यहाँ हर आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है, हर एक के अपने अपने। और हमको लगता है इसका एकदम गलत है ये उसको, अगर हम ये भी सोचे ना इसका संस्कार गलत है, तो वो सोचेगा हमारा संस्कार गलत है। हम ये सोचते हैं देखो इतना ज्ञानी होकर भी कितना अज्ञानी है, हमने ये सोचा एक आत्मा के बारे में, वो ये सोचेगा कि हम कितने अज्ञानी हैं। जो हमारे मन में संकल्प दूसरे के प्रति उत्पन्न होता है, वही संकल्प उसके मन में हमारे प्रति उत्पन्न होता है। बस उस तरह का है, जैसे वो बीच में कोई नीचे उषा बहन ने कोई कहानी बताई थी ना, कि एक राजा है, उसका एक मित्र है लकड़हारा है। तो जो लकड़हारा है उसके पास बहुत सारी लकड़ियां है चंदन की, तो उसकी लकड़ियां बिकती नहीं है। तो राजा उसका मित्र है, परंतु वो इतनी सारी चंदन की लकड़ियां, वो सोचता है मुझे बहुत धनवान बनना है, कैसे बनूं। वो तो तभी बनूंगा मेरी सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाए, पर वो बिकेगी भी कैसे, क्योंकि कोई एक हाथ जो लोग मरते हैं वो थोड़ी सी लकड़ी लेके जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति अगर मर जाए तो ये इतनी सारी लकड़ियां ले जाए और मेरी सब बिक जाए। तो वो सोचने लगता है, सोचते सोचते ये सोचने लगता है अगर ये राजा मर जाए तो कितना अच्छा होगा, राजा मर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ये मेरी सारी लकड़ियां भी बिक जाएगी, अच्छा इसको कैसे मारूं। फिर आगे के चिंतन, एक चिंतन आया कि ये मर जाए फिर इसको मारेगा कौन, फिर सोचने लगता है अच्छा उसके दरबारी में से कोई मारे, फिर सोचता है नहीं वो तो बहुत अच्छे संबंध है वो तो नहीं मारेंगे, फिर सोचता है कि उसके आसपास के जो राजा है वो तो उसके सारे ही मित्र हैं, अब वो भी नहीं मारेंगे, अब क्या करूं मैं ही मारता हूं फिर इसको। फिर वो सोचते 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 यहां तक पहुंच जाता है कि मुझे उसको मारना है कैसे भी करके। अच्छा फिर कैसे, ये आगे चिंतन कि कैसे मारूं, महल के अंदर मारूंगा तो मुश्किल है, मैं पकड़ा जाऊंगा उसको, बाहर लेके जाके मारता हूं। ये इधर से इसने चिंतन चालू कर दिया। उधर राजा सोच रहा है मेरा एक मित्र है, वो उसके पास इतनी सारी लकड़ियां है, वो सारे राज्य के काम आ जानी चाहिए, वैसे भी अकेला है, ये वैसे भी इसका क्या उपयोग है, अगर ये मर जाए तो बहुत ही अच्छा है ना, वो सारी लकड़ियां राज्य के कार्य में आएगी, अब चाहे मरेगा कैसा, फिर उसे मुझे ही मारना पड़ेगा तो वो उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है, ये इसको मारने की प्लानिंग। फिर दिखाया है कि भाई उसको पश्चाताप होता है और वो हो जाता है ठीक है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि ये आत्मा देखो कैसी है, इतना ज्ञान में चलने के बाद में भी इसमें ये संस्कार गया नहीं है, इसका बहुत क्रोध है, उसी समय वो सोचेगी कि इसमें भी बहुत क्रोध है। हम ये सोचते देखो इसमें अहंकार कितना है, उसी समय वो ये सोचेगा कि इसमें अहंकार कितना है। इसमें ज्ञानी अज्ञानी की तो बात ही नहीं है, जिसके प्रति हम जो संकल्प करेंगे वैसा ही संकल्प जाएगा और वो वापस आएगा। हम अगर कोई बाहर का भी व्यक्ति है उसके प्रति भी अगर सोचे, हम अगर ट्रेन से जा रहे हैं हम ये सोचते हैं कि बाहर देखो कोई गालियां दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम उसके बारे में निगेटिव अगर सोचते हैं तो वो हमारे बारे में वैसा ही निगेटिव सोचना चालू करेगा, फिर वो ये नहीं सोचेगा कि एक महान आत्माएं हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं वाइट ड्रेस, वो नहीं, जैसे हमने फेंका बस वो वैसा ही आएगा। इसके लिए चाहे कोई भी आत्मा हो ये सोचो ही नहीं मैं ये अज्ञानी है, बीके नॉन बीके, इस तरह का चिंतन ही ना हो, सब आत्माएं हैं, सब बाप की संतान है, सबको वर्षा मिलना ही है, सब ब्रह्मा की बिरादरी, क्या पुरानी बिरादरी है, परसों मुरली में था ना, ये सब पुरानी बिरादरी है सबकी। तो ये यही सोचो, ये सोचना ही नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी बीके नॉन बीके, धारणा है धारणा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं सोचो, सब में एक जैसी धारणा नहीं हो सकती, सबके अपने अपने संस्कार, आत्मा लेकर आइए, सभी अच्छे है तो ही वो अच्छे बनेंगे। निर्मल शांता दादी का दिखाते हैं ना, वो किसी बहन ने दूध गिरा दिया तो वो क्या कहते हैं, वाह यहाँ तो दूध की नदियां बह रही है तो वो ये भी बोल सकती थी क्यों गिराया, ध्यान कहाँ था, बहुत कुछ कह सकते थे, पर उन्होंने कहा देखो दूध की नदी अभी से बहना चालू हो गई है सेंटर पर तो वो गलती तो हुई है परंतु उसको किस तरह दृष्टि कैसी है तो उस पर आधारित है सब कुछ। ये यहाँ पूरा हुआ, फिर उसके बाद में जर्मन, जर्मनी ग्रुप से क्या कहा, सहज योगी है, सहज ज्ञान का अनुभव करते हो, जैसे बाप चमकता हुआ सितारा देखते हैं वैसे तुम भी चमकता हुआ सितारा देखते हो, माया ढक तो नहीं देती है इसको। फिर दृढ़ संकल्प करो, क्या कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन जगतजीत मायाजीत मायाजीत जगतजीत बन कर ही रहे, संकल्प की बात है केवल, दृढ़ संकल्प आज और अब, क्या कहा, आज और अब दृढ़ संकल्प करो कि, आज और अब दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन जगतचित मायाचित बन कर ही जाए। फिर उसके बाद में है वो जो तीन बातें हैं वहां पर, एक के बाद एक जोड़ी है बाबा ने, सबसे पहला तीन बातें, तीसरा चीयरफुल, दूसरा कमल और पहला तीसरा चीयरफुल, दूसरा कमल और पहला जादू का शब्द, कोई भी बात आती है तो बाबा के बाबा को सौंप दो, बाबा को दे दो, और ये शब्द जो है वो जिगर से खो, ये मुख का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है, नारे लगाने की बात नहीं है, मेरा बाबा ये अंतकरण अंतर चेतना से आवाज निकलनी चाहिए, आर्त पुकार तो ही वो काम करेगी, नहीं तो नहीं, माया कोई हनुमान, अच्छा तो वैसे दिखाना की जरूरत नहीं है, तो जब माया आती है तो बाबा सबसे पहले भूल जाता है, इसके लिए इसमें अटेंशन रखना है कि वो भूले ना, ये शब्द याद रखना है, और ये अगर रहा तो कमल समान हो जाएंगे, फिर माया के जो समस्या के कीचड़ है उससे ऊपर रहेंगे, जैसे तुमने कमल का चित्र बनाया हुआ है, जैसे ब्रह्मा के ऊपर कमल दिखाया है जर्मन वालों ने, तो वो है या अपने आप को भी वहां देखते हो, तो तुम्हारा आसन जो तुम्हारी सीट है वो कमल है, तो स्वयं को निरंतर समझना मैं कमल आसन करूँ, ठीक है ना, कमल पर अपने आप को क्या समझना, मैं कमल आसन करूँ, तो ये संसार का कीचड़ नीचे है, विकार नीचे है, देहभान नीचे है, व्यर्थ नीचे है। कुछ दिन पहले परसों की मुरली की शुरुआत थी, ये है भक्ति मार्ग की अंधियारी रात। साकार मुरली, हम ये चिंतन कर रहे थे कि ज्ञान मार्ग की अंधियारी रात कौन सी है? विस्मृति, व्यर्थ संकल्प। मुरली में आया था ये है भक्ति मार्ग की अंधियारी रात, और ज्ञान मार्ग की अंधियारी रात है। ज्ञान तो मिल गया परंतु अभी विस्मृति में है, व्यर्थ में है, तो वो भी अंधियारी रात है। तो सबसे पहला तो शब्द, बाबा शब्द को कायम रखना, ये जादू का शब्द है, कायम रखना, बरकरार रखना। सेकंड, कमल समान, अपने आप को कमल आसन, कमल समान रखना। और तीसरा, चीयरफुल, एक ही मूड, एक ही मनोदशा। कौन सी मनोदशा, कौन सा मूड? चीयरफुल, हर्षित सदा। तो ये तीन बातें याद रखनी।
तो
हाँ, फिर दूसरी, ये यहाँ जो उनके लिए कहा है कि मधुबन में आए, एक तो जर्मन वालों की विशेषता बताई, जर्मन वालों ने क्या कमाल करना है वो बताया, और यहाँ क्यों आए, कोई भी मुश्किल बातें हैं तो यहाँ छोड़ के जाना, यहाँ से सहजयोगी का वरदान लेकर जाना। जर्मन ग्रुप नहीं है, सहजयोगी ग्रुप। विशेषता कौन सी बताई? कि मधुबन से बहुत प्यार है। तो मधुबन से प्यार अर्थात पाप से प्यार, मुरली से प्यार अर्थात बाप से प्यार, अमृत वेले से प्यार अर्थात बाप से प्यार, ज्ञान मनन चिंतन से प्यार अर्थात बाप से प्यार, श्रीमद से प्यार अर्थात बाप से प्यार, पढ़ाई से प्यार अर्थात बाप से प्यार, नियम और मर्यादाओं से प्यार अर्थात बाप से प्यार, टोली से प्यार। अच्छा, परिवार से प्यार अर्थात बाप से प्यार, प्रभु परिवार, परिवार है किसका, यज्ञ से प्यार अर्थात बाप से प्यार, सेवा से प्यार अर्थात बाप से प्यार। तो यहाँ बाबा ने क्या बात कही है, मधुबन से प्यार अर्थात बाप से प्यार। किसका प्यार ज्यादा है, बाप का या बच्चों का? तो ये किसी ने उत्तर दिया बाप का। बाबा ने कहा बच्चों का पदम गुण है, पर बाद में आगे वही बताया कि मेरा ज्यादा है, क्योंकि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। 21 जन्मों के लिए तकदीर, अविनाशी तकदीर, कारण से ही ये थी कमाल। फिर ये विशेषता थी, और कमाल क्या करनी है, जैसे वो अभी गीता का किताब बनाई है, तो वैसे ऐसा कोई नामी ग्रामी निकालो जो आवाज बुलंद हो जाए, तो कमाल करके दिखाओ। ये यहाँ पूरा हुआ। फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर, तो बाबा क्या, कौन सा वायुमंडल क्या देखते हैं सेंटर पर वृद्धि का? वायुमंडल और वातावरण को देखते हैं बाबा, ये नहीं देखते हैं कि छोटा है या बड़ा है, वायुमंडल को देखते हैं। अगर कलराठी बंजर जमीन से दो भी निकले तो उसको 100 देखते हैं, तो 2 100 के बराबर है। तो क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, जहां भी आपके कदम पड़ेंगे सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, जहां पर भी आप जाओगे। दूसरा प्रश्न है, डबल रिजल्ट किससे होगी, दृष्टि की सेवा और मुख की, रूप बसंत, रूप बसंत। तो एक सेवा है मुख की, वो है ज्ञान। अभी दृष्टि की सेवा कैसी, वो चिंतन का विषय है। दृष्टि से सेवा कैसे करें? 18 जनवरी मुरली फर्स्ट लाइन, पूर्वी बहन क्या था 18 जनवरी की मुरली फर्स्ट लाइन? बाप दादा की दृष्टि इन स्थूल नेत्रों पर जब पड़ती है तो क्या हो जाता है, ये स्थूल नेत्र, ये जो दृष्टि है ये परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा की दृष्टि इन स्थूल नेत्रों पर पड़ी, परिवर्तन हुए। अभी ये जो परिवर्तित दृष्टि है, ये जब आत्माओं पर पड़ेगी, इसमें अलौकिकता है, दिव्यता है, पवित्रता है, ये है दृष्टि की सेवा। तो दृष्टि की सेवा अर्थात सबको आत्मा देखना। जब तुम आत्मा देखते हो तो क्या होता है, करंट देते हो। एक और दृष्टि की सेवा, इन आंखों से क्या क्या करना है, नजर से निहाल कर देना, सुख की फीलिंग देना, और अपनेपन की शक्तियां देना, शक्तियां ट्रांसफर करना आंखों से, आत्माओं को इमर्ज करना और उनमें शक्तियां भरना, पावर भरना आत्माओं में, प्यूरिटी की, सुख की, शांति की, हर प्रकार की शक्तियां इन आंखों से बहुत सारी। उस दिन कहा ना प्रदर्शनी में 3 आंख, रुकुटी और मुख, ये है चैतन्य म्यूजियम। उसमें पहले डेकोरेशन, पहले फिटिंग, फिर डेकोरेशन, फिर तीसरा उद्घाटन, और फिर ओपनिंग, ओपिनियन लिखाते हैं। तो तुमको ये जो चेहरा है वही तुम्हारा चैतन्य म्यूजियम है, उसमें ये तीन मुख्य चित्र है। तो मुख की दृष्टि की सेवा, तो ये दोनों रीति से डबल रिजल्ट मिलेगी अगर इससे करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट नैरोबी, क्या कहा? बाप समान सेवा जारी, टीचर बहनों से। चलो टीचर बहनों से बात करते, तो टीचर बहनों को क्या कहा बाबा ने? टीचर की परिभाषा दी है मनसा वाचा कर्मना, ये जो तीन है ना, मनसा से भी सेवादारी वो है टीचर, और इस सेवा से क्या करना है, दूसरों को परिवर्तन करना है। तो इसमें अगर सफलता मूर्त है तो पास्वित होना, इसमें अगर बैलेंस है तो सर्वगुण संपन्न स्वयं अनुभव करेंगे और दूसरों को भी सर्वगुणों से संपन्न बना सकेंगे। तो दूसरे लोग क्या कहेंगे फिर, ये तो गुणों का दान करने वाली है, ये तो दिव्य गुण जैसे कि स्पष्ट दिखाई, दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा, और फिर देवी जी नमस्कार करते करते संस्कार लेकर द्वापर में देवियों की पूजा आरंभ करेंगे। इसके लिए बहुत सूक्ष्म बात जो यहाँ कही है, इनका बैलेंस इसकी चेकिंग करो, तीनों प्रकार की सेवा की चेकिंग, मतलब हमने मनसा की सेवा कितनी की, वाचा की तो बहुत कर दी, कर्मनाभि की भी कर दी, परंतु मनसा की तो ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो दूसरे परिवर्तन नहीं होंगे, अगर ये बैलेंस नहीं है तो सर्वगुणों का अनुभव स्वयं भी नहीं दूसरों को भी नहीं, अगर ये बैलेंस नहीं है तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आज तो नहीं है पर ये भी बात है। तो इसको चेक करो, मन से सेवा मतलब सीधा बात फिर से आ गई संकल्प पर, संकल्पों से अगर सेवा करनी है तो संकल्प आत्मिक होने चाहिए। निरंतर चिंतन केवल मन का ही है, बस आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, दूसरा कोई यही नहीं, यही पर आना है आत्मिक चिंतन, मेन सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। तो संकल्प वाणी और कर्म, फिर क्या कहा कि गुणमूर्त हो जाएंगे, जैसे ज्ञान का दान करते हो वैसे गुणों का दान करो, ये सबसे बड़ा दान है एक्चुअली। वैसे तो ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है संसार में, संसार तो उसको दान मानता है, पैसे वो सब जो कुछ है धन दौलत, उससे भी ऊपर है ज्ञान, उसके भी ऊपर है गुण, उसके ऊपर है लास्ट अल्टीमेट जो है वो शक्ति है, पर वो शक्तियों का जो दान है वो पावरफुल आत्मा ही कर सकती है। अगर देखा जाए ज्ञान का दान करने के लिए थोड़ा इधर उधर से ज्ञान थोड़ा रट लो तो ज्ञान दान करना चालू हो जाता है रट रट के। एक तो सबसे पहले स्थूल है, चार प्रकार के लेवल अगर देखे जाए, जो स्थूल वो कोई भी कर सकता है, पैसे चाहिए और करो दान, गाय गौ दान, भू दान, ये दान वो दान, कन्या दान, वो कोई भी करता है। उसके ऊपर है ज्ञान, वो भी थोड़ा सा अगर पढ़ाई वगैरह की, विश्वविद्यालय में चले गए, थोड़ा सा लंबा समय गुजारा, थोड़ी मेहनत की, तो ज्ञान दान चालू हो जाएगा। उसके ऊपर है फिर गुणों का दान, क्योंकि वो गुणों का दान करने के लिए ज्ञान स्वरूप में आना पड़ेगा, तब गुणों का भी दान चालू होता है। और शक्तियों का दान इज द हाईएस्ट, उसके लिए शक्तिशाली बनना पड़ता है, वो बहुत पावरफुल स्टेज है, जिसमें दादियों की जैसी अवस्था है, निर्बल आत्माएं आ जाए उसमें पावर बढ़ जाए, बिना कुछ उसको कहे, बिना कुछ उससे बात किए, केवल देखा और शक्तियां भर दी, बस वो शक्ति अभी अपने आप चैनलाइज होगी, तो वो सबसे हाईएस्ट स्टेज। तो ये कहा, फिर उसके बाद में और क्या कहा टीचर्स को, एक एक टीचर कितने सेंटर संभाले, आठ आठ दस दस, और ये हो चुका है, ये मुरली है 81 की, 81 की जितनी बहने वहां बैठी होगी वो आज सभी क्या है 50, बाबा तो 10-10 और 8-8 की बात कर रहे हैं, अभी तो वो 100-100 सेंटर संभाल रहे होंगे, क्योंकि ये जो भी बहने हैं 81 की, 36 साल पहले जो भी बहने वहां थी बाबा के सामने और जिनके लिए मुरली चल रही हो, बाबा कह रहे कि चार चार और पांच पांच एक सेंटर अभी संभालते हो, समय ऐसा आएगा कि तुमको संभालना पड़ेगा, और वो सभी संभाल रही हो, साकार हो गया मतलब जो बाबा ने कहा है यहाँ पर। हाँ वही, कहीं ना कहीं तो होगी, हो ही नहीं सकता कि अभी वो वही 36 साल पहले, कितने साल, 81 की मुरली है ना, इतने सालों में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो वो हो गया साकार जो बोला है भविष्यवाणी, तब कहेंगे सर्विस। ये पूरा हुआ नैरोबी, नैरोबी अफ्रीका, अफ्रीका को क्या कहा, बहुत एरिया है, सेवा करो बहुत, परंतु परंतु क्या वहाँ एक जगह नहीं रुक जाना है, सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, संदेश दिया, आगे बढ़ो। ये अफ्रीका, तो उसके बाद में नैरोबी। संजय भाई नैरोबी का बता दो फटाफट, जल्दी बताओ ना, टाइम कम है। लास्ट सो फास्ट, परवाने, सच्चे परवाने, क्षमा, परवाने, मर्जीवा जन्म, ये सब बाबा ने महिमा की है। और बाप के भी क्या है, बाप से भी ऊंचे, बाप के, सर के, ताज के, मन के, मणि, हीरा, वो वहां जोड़ दिया एक एक, मतलब जहां से शब्द छोड़ा है वहां से नेक्स्ट चालू, जैसे साकार मुरलियों में होता है ना इस तरह की। ये दिस इज नोन एज, ये टेक्निक को कंटिन्यूअस स्पीच टेक्निक कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे भारत मेरा देश है, देश बहुत सारे है, बहुत सारे आम इधर है, आम बहुत अच्छा फल है, मीठा फल है, फल ये भी है, मतलब जहाँ वाक्य का अंतिम छूटता है वहां से नया वाक्य शुरुआत करना।
भारत का
तो मतलब जहाँ वाक्य एंड होता है वहीं से साकार में मूल्यों में इस तरह से आता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वो राज्य ऐसा ऐसा था, वहां पर ये कुछ नहीं था, फिर ये ऐसा है। इसके लिए लोगों को पूछो क्या है तो वो पता ही नहीं चलता क्या था मूवी, कौन सी पॉइंट कहाँ खत्म हो रही हो, टॉपिक कहाँ एंड हो रहा है और चालू कहाँ से हो रहा है। तो बहुत अच्छी थी पर वो मत पूछना क्या था। मतलब जहाँ एंड होता है वो लास्ट वर्ड से अंताक्षरी कैसी होती है ना, उसी तरह वहां से नया वाक्य शुरुआत जहाँ एंड होगा। जैसे यहाँ बाबा बात क्या कर रहे हैं कि तुम बाप से भी पूछो, बाप के सिर के ताज के मणि हो। अभी जो मणि उसको छोड़ दिया, अभी मणि पे आ गए। अभी मणि सच्चे झूठे, आजकल तो सच्चे भी झूठे लगते हैं, उसको छोड़ दिया। सतयुग, सतयुग में पहुंच गए। किसके लिए? वहां पर जो मणि होते हैं, हीरे होते हैं, वो कैसे होते हैं? लाइट के माफिक होते हैं। जैसे अभी उसमें दूसरा और उधर, उदाहरण में उदाहरण, उदाहरण में उदाहरण, महान साहित्यकार जो होते हैं ना कवि, वो इस तरह की भाषा उनकी होती है। शेक्सपियर के जो लिटरेचर है ना वो इस तरह का है। एक उदाहरण दे रहा है, उस उदाहरण को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण, उस उदाहरण को समझाने के लिए तीसरा, उदाहरण में उदाहरण में उदाहरण। तो यहाँ पर लाइट जो है वो, जैसे हरे कलर की लाइट तो हरा प्रकाश, कागज हरा, लाल कागज तो लाल, लाल लाइट, और जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो जगमग हो जाती है। तो तुम सब कौन हो? हीरे, ताज के हीरे हो, मणि हो, मणके हो, और डबल हो के, फिर वो शब्द वहां से पकड़ा और वो डबल, डबल कौन से? हीरो पाटधारी भी हो। तो ये नशा सदा रहे, ये भी एक समान है कि मेरा सारे ही कल्प में हीरो पाट रहा। सत्युग त्रेता छोड़ दो, द्वापर से अब तक जितने भी हमने जन्म लिए हैं सभी महान जन्म थे एक एक। ये भी नशे वाली पॉइंट, अपने आप को देखना, कभी ये था, कभी ये था, कभी यहाँ का राजा, कभी वहां का राजा। तो महान पाठ था हमारा, महान आत्माएं थी, ऐसी आत्माएं थी जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, कुछ कुरीतियों को खत्म किया, ऐसे हमारे पाठ थे सर। बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां जिन्होंने, जिनकी वजह से हो गई, ऐसा हमारा पाठ था। आध्यात्मिक जागृति की हमने अलग अलग स्थानों पर, किसी गांव में, जहां जहां हम गए वो स्थान तीर्थ बन गया था तब। आज भी हमारे पुतले कहीं कहीं होंगे गांव गांव में, जहाँ पे लोग अभी भी मालाएं डालते हैं, कोई तो कोई स्वामी, कोई महाराज, कोई संत, ये सब हम ही है। भारत में कितने, हर 10-100 किलोमीटर पर देखो तो ये कौन, वो कहते हैं ये उसका अवतार, अच्छा ये उसका अवतार, ऐसे कहते हैं ना, ये संत बहुत महान संत है। तो उनमें से हम ही है सब, तो हमारा हीरो पार्ट है। ये यहाँ पूरा हुआ। नेक्स्ट और क्या कहा नैरोबी को? महल, हाँ। तो बाबा ने वो पूछा, वो सेंटर खोला होगा, बाबा ने कहा ये जो इतने आए हैं ये सिद्ध करता है कि निश्चय बुद्धि है, सेवा की सबूत है ये, और वो महल ये बना दिया। तो बाबा भी चक्र लगाते हैं क्या? आपने देखा है क्या? वो एक बार नीचे भी पूछा था ना, वो अहमदाबाद का सेंटर आप बाबा उद्घाटन, तो बाबा ने क्या कहा था? पहले से ही होके आ गए बाबा को। नहीं नहीं, अहमदाबाद का कुछ है ना, हाँ। तो बाबा ने तो पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं, ऐसे कुछ कहा था, देख के आए, हो के आए। तो यहाँ पर भी जैसे माँ, बच्चे के चक्र लगाते हैं कि किसने है। तो यहाँ बाप दादा मात पिता शब्द कैसा कहा है, बाप दादा और मात पिता, बाप दादा मात पिता चक्र लगाते रहते हैं, संभाल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते
बच्चे बाप को,
और वो दोनों को भी नींद की आवश्यकता नहीं, अच्छा ही। और अशरीर एक आकारी शरीर, एक अव्यक्त शरीरधारी और एक निराकार, तो कहीं पर भी जा सकते। तो इसका मतलब चिमन भाई जी, तो नींद बाधा है, ठीक है ना। नींद के अव्यक्त शरीरधारी ब्रह्मा फरिश्ता, तो दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं। इसी में रहते हुए वो तो बाबा अपना बता रहे हैं कि बाबा बच्चों की संभाल करते, सबको देखते रहते, ये बात यहाँ है। और क्या है, हो गया पूरा? लोगन मांगना, मांगने वाले क्या क्या मांगता है ब्राह्मण? नहीं, एक तो स्थूल से चालू करके अति सूक्ष्म में आते हैं। मांग क्या होती है ब्राह्मणों की? एक तो नाम मान शांत है, नहीं उससे भी पहले फैसिलिटीज, साधन, पहले तो साधन, फिर उसके बाद में थोड़ा और सूक्ष्म अगर चला जाए तो नाम मान, और सूक्ष्म में चले जाओ तो स्नेह चाहिए, केयर, अटेंशन, स्नेह, ये जो है ना अति सूक्ष्म मांग है, प्यार। हाँ, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को नहीं मिलेगा, पर हर आत्मा की कामना होती है कि मुझे सब प्यार करे, केयर करे, अटेंशन दे, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कामना। पुरुषार्थ से अगर स्नेह है तो सबका स्नेह स्वतः मिल जाएगा, ये सूक्ष्म बात है 69 की। सारी मानने की जरूरत नहीं, परंतु ये कामना हर आत्मा में रहती है, एप्रिसिएशन, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, की कोई मेरी स्तुति करे, तारीफ करे,
अच्छा अगर है
तो अच्छाई वो पीट कर दो तो वो पीछे आ जाएगी, शैडो की तरह है वो, परछाई की तरह इच्छा है, वो पीछे पीछे आ जाएगी। तो मांगना, हाथ पसारना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, दे दो, ये जो मांगना है बाबा, तो यहाँ खुशी के खजाने से संपन्न, ये तो बहुत दूर की बात है, उसको खुशी नहीं मिल सकती 1%। इसको अपोजिट ले लो, अभी जो देता है उसको खुशी के खजाने से वो संपन्न। अगर मांगने वाला खुशी के खजाने से संपन्न नहीं है तो जो दे रहा है वही सारी चीजें अभी चालू करो, स्नेह, अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट, सहयोग, ये सब जो दे रहा है उसको वो स्वतः मिल जाएगा, और उसको फिर वो खुशी के खजाने से संपन्न। तो आगे किस पे खजाना, अगर खुशी अगर खजाना है तो उससे वो भरपूर हो जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, मांगने की जरूरत नहीं किसी को भी, स्वतः मिलेगी, मांगने वाले को नहीं मिलता, जो नहीं मांगता उसको स्वतः ही मिल जाएगा, यही शर्त। तो ये सारी मुरली है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रिपीट करना है, रिवाइज करना है रोज, एक अनुभव में लाना है, दूसरा चेक करना है, चेंज करना है, कमल पुष्प समान रहना है, बाबा शब्द जिगर से कहना है, और उसके बाद चीयरफुल, हमारा मूड सदा एक ही हो, ऐसा चीयरफुल। उसके बाद में हीरो एक्टर, हीरो पार्ट बजाने वाले, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले हीरो एक्टर। और बैलेंस रखना है किसमें, तो मनसा सेवा का अगर पलड़ा कम है तो उसको लाना है, कि हमको मनसा को शक्तिशाली बनानी, हमारे मन में उठने वाले एक एक संकल्प को शक्तिशाली बनानी, और व्यर्थ संकल्प का जो हथौड़ा वो जो कहा ना वो सब, हाँ, ड्रामा शब्द, व्यर्थ संकल्प के लिए ड्रामा शब्द का बार 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 चिंतन करना है, कि ये ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, विविधतापूर्ण है, कैसे सबका कल्याण इसमें है, निरंतर ड्रामा का चिंतन। और संकल्प समय को वेस्ट नहीं करना है, और मांगना नहीं है, हीरो पार्ट धारी अगर देखा जाए तो सारी, और फिर मर्जीवा, सच्चे परवाने, क्षमा पर फिदा होने वाले, क्षमा को भी नाज है ऐसे परवानों को, उस दिन आई था, आज आया है। उस दिन फीमेल, आज मेल हो गया क्षमा। तो और कोई पॉइंट रह गया होगा तो बताइए, अरविंद भाई पूरा वो ओम शांति।